एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करता है ज्ञान गोष्ठी, दुनिया के बेहतरीन विचारों और विचारकों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। नमस्कार, आज हम एक ऐसी किताब पर बात करने वाले हैं जो आधुनिक इतिहास के कुछ सबसे अहम और कह सकते हैं विवादास्पद पलों के केंद्र में रहे एक शख्स के नजरिए को सामने रखती है। ये किताब है जॉर्ज डब्ल्यू बुश की डिसीजन पॉइंट्स, हिंदी में कहें तो निर्णायक बिंदु
जी।
और ये अमेरिका के 43वें राष्ट्रपति ने खुद लिखी है। इसमें उनके जीवन और खासकर उनके राष्ट्रपति कार्यकाल के वो सबसे मुश्किल फैसले हैं उनका लेखा जोखा है।
बिल्कुल, जॉर्ज डब्ल्यू बुश 2001 से 2009 तक अमेरिका के राष्ट्रपति रहे और एक मतलब जाने माने राजनीतिक परिवार से आते हैं।
हाँ, उनके पिता भी राष्ट्रपति थे, जॉर्ज एच डब्ल्यू बुश।
जी हाँ, और जॉर्ज डब्ल्यू बुश खुद राष्ट्रपति बनने से पहले टेक्सास के गवर्नर थे और उनका करियर तेल उद्योग से भी जुड़ा रहा है शुरू में।
तो सवाल ये है कि आज उनकी कहानी, उनका नजरिया समझना क्यों जरूरी है? देखिए, उनका जो कार्यकाल था वो ऐसी घटनाओं से भरा रहा जिन्होंने सच में दुनिया का नक्शा बदल दिया। जरा सोचिए, 9/11 के आतंकी हमले,
बिल्कुल,
उसके फौरन बाद अफगानिस्तान और फिर इराक में युद्ध
जी,
2005 का वो भयंकर कैटरीना तूफान,
हाँ,
और 2008 का वैश्विक वित्तीय संकट, मतलब ये सब उनके ही दौर की बड़ी घटनाएं हैं।
सही कहा। और ये किताब, जैसा आपने कहा, ये कोई टिपिकल ऑटोबायोग्राफी नहीं है। ऐसा नहीं कि जन्म से लेकर आखिर तक सब कुछ लाइन से बता दिया।
हाँ, वो क्रोनोलॉजिकल नहीं है।
नहीं,
इसका फोकस अलग है। ये उनके जीवन और प्रेसिडेंसी के 14 ऐसे खास मोड़ों पर, मतलब निर्णायक बिंदुओं पर केंद्रित हैं जहां उन्हें बहुत मुश्किल, बहुत दूरगामी असर वाले फैसले लेने पड़े।
अच्छा,
और किताब का इरादा भी बिल्कुल साफ लगता है
जी,
ये बताना कि उन्होंने जो किया वो आखिर क्यों किया।
जी,
लेकिन कोशिश करते हैं कि हम पढ़ने वाले खुद को उनकी जगह रखकर सोचें कि भाई उस वक्त उनके पास क्या जानकारी थी, क्या सलाह मिल रही थी, उनके अपने सिद्धांत, उनके विश्वास क्या थे जिन्होंने उन फैसलों को एक शक्ल दी।
हाँ, और पूरी किताब में ना इस बात पर बहुत जोर है कि लीडरशिप का असली मतलब ही है मुश्किल हालात में फैसले लेना। अक्सर भारी दबाव होता है, जानकारी भी पूरी नहीं होती,
सही बात है,
और तब आपको कड़े फैसले लेने की हिम्मत दिखानी होती है। तो ये किताब एक तरह से इतिहास के सामने उनके अपने शब्दों में उनके कामों के पीछे का तर्क रखने की कोशिश है।
दिलचस्प बात यह है कि किताब की शुरुआत होती है उनके राष्ट्रपति बनने से काफी पहले एक बहुत ही निजी फैसले से।
अच्छा,
ये था शराब छोड़ने का फैसला। बात है 1986 की, उनका 40वां जन्मदिन था। उन्हें लगा कि शराब उनकी जिंदगी पर, मतलब, हावी हो रही है, उनकी क्षमता को कम कर रही है।
और उन्होंने फिर इसे छोड़ा। वो इसे अपनी जिंदगी का एक बहुत ही फंडामेंटल मोड़ मानते हैं, एक ऐसा पल जिसने उन्हें वो अनुशासन दिया, वो मानसिक स्पष्टता दी जो बाद में पब्लिक लाइफ में,
बिल्कुल,
और खासकर राष्ट्रपति पद की चुनौतियों का सामना करने के लिए बहुत जरूरी साबित हुई। उनके लिए यह सिर्फ एक आदत छोड़ना नहीं था, ये इच्छा शक्ति, विश्वास और परिवार के सहारे खुद को बदलने जैसा था।
तो इस निजी फैसले के बाद किताब उनके राजनीतिक जीवन के एक बड़े निर्णय पर आती है, साल 2000 में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने का फैसला।
जी,
उनका मकसद जो उन्होंने बताया वो था कि ओवल ऑफिस यानी राष्ट्रपति कार्यालय में सम्मान और गरिमा बहाल करना, और साथ ही अपनी जो करुणामय रूढ़िवाद यानी कंपैशनेट कंजर्वेटिज्म की सोच थी उसे लागू करना।
हाँ, और उस चुनाव का जिक्र करते हुए वो फ्लोरिडा रिकाउंट विवाद को भी याद करते हैं, वो कितना करीबी और नाटकीय चुनाव था।
हाँ, बहुत ही ज्यादा।
तो ये फैसला उनके पॉलिटिकल करियर का एक बहुत बड़ा पड़ाव था जिसने उन्हें सीधे नेशनल स्टेज पर ला खड़ा किया।
तो ये तो हुई व्यक्तिगत और राजनीतिक शुरुआत। इसके बाद किताब सीधे उनके राष्ट्रपति कार्यकाल की उन बड़ी चुनौतियों में उतरती है जिनके लिए उन्हें सबसे ज्यादा याद किया जाता है, या कहें जिन पर सबसे ज्यादा बहस होती है।
बिल्कुल, राष्ट्रपति बनने के कुछ ही महीने हुए थे और उन्हें अपनी पहली बड़ी नैतिक दुविधा, एक मॉरल डिलेमा का सामना करना पड़ा।
क्या थी वो?
ये मुद्दा था स्टेम सेल अनुसंधान का, स्टेम सेल रिसर्च।
अच्छा, हाँ, ये तो बड़ा जटिल मुद्दा था।
बहुत, एक तरफ तो इससे कई बीमारियों के इलाज में क्रांति की जबरदस्त संभावना दिख रही थी, लेकिन दूसरी तरफ क्योंकि इसमें भ्रूण, एम्ब्रियो का इस्तेमाल होता था, तो गहरे नैतिक और धार्मिक सवाल जुड़े थे। जीवन की पवित्रता का सवाल था।
एथिसिस्ट्स यानी नैतिकतावादियों की राय ली, धार्मिक नेताओं से भी बात की,
और अंत में उन्होंने एक बीच का रास्ता चुना, एक कॉम्प्रोमाइज किया। उन्होंने फैसला किया कि फेडरल गवर्नमेंट का पैसा सिर्फ उन स्टेम सेल लाइंस पर रिसर्च के लिए इस्तेमाल होगा जो उस फैसले से पहले ही मौजूद थीं।
अच्छा, मतलब नई लाइंस बनाने के लिए सरकारी फंडिंग नहीं।
जी, मकसद यही था कि नई स्टेम सेल लाइन बनाने के लिए भ्रूण तैयार करने को सरकारी प्रोत्साहन न मिले। अब ये एक ऐसा समझौता था जिसने शायद किसी भी पक्ष को पूरी तरह संतुष्ट नहीं किया, लेकिन बुश इसे नैतिक चिंताओं और वैज्ञानिक प्रगति के बीच संतुलन बनाने की कोशिश के तौर पर देखते हैं।
और फिर आया वो दिन जिसने न सिर्फ उनके राष्ट्रपति पद को बल्कि शायद पूरी दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। 11 सितंबर 2001,
9/11।
किताब में उस दिन का ब्यौरा काफी भावनात्मक है। वो फ्लोरिडा के एक स्कूल में बच्चों के साथ थे जब उन्हें दूसरे टावर पे हमले की खबर मिली।
उस क्षण की अनिश्चितता और फिर धीरे धीरे जो तबाही की भयावहता सामने आई, किताब बताती है कि कैसे उन्हें फौरन एयरफोर्स वन विमान से ही कई आपातकालीन फैसले लेने पड़े।
जैसे
पूरे देश के हवाई क्षेत्र को बंद करना, सभी सिविलियन फ्लाइट्स को जमीन पर उतारना, और शायद सबसे मुश्किल फैसला ये अधिकार देना कि अगर कोई हाईजैक किया हुआ विमान किसी टारगेट की तरफ बढ़ रहा हो तो उसे मार गिराया जाए।
बाप रे, कितना मुश्किल फैसला रहा होगा ये। वो लिखते हैं कि उस दिन की घटनाओं ने उन्हें रातों रात एक वॉर टाइम प्रेसिडेंट यानी युद्धकालीन राष्ट्रपति में बदल दिया।
हाँ, उनकी प्राथमिकताएं, उनका फोकस सब बदल गया। अब नेशनल सिक्योरिटी सबसे ऊपर थी।
और इसी बदली हुई प्राथमिकता का नतीजा था आतंकवाद के खिलाफ युद्ध यानी वॉर ऑन टेरर की नीतियां।
जी,
इनमें से एक था पेट्रियट एक्ट।
हाँ, पेट्रियट एक्ट। बुश इसका बचाव करते हुए कहते हैं कि 9/11 ने दिखाया कि हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं उनके बीच जानकारी साझा करने, संदिग्धों पर नजर रखने की व्यवस्था कमजोर थी। उनके मुताबिक पेट्रियट एक्ट ने एजेंसियों को वो जरूरी कानूनी अधिकार दिए जिससे वो भविष्य के हमलों को रोकने के लिए सूचनाओं के बिखरे हुए टुकड़ों को डॉट्स को कनेक्ट कर सके।
फिर आता है एक और बेहद विवादास्पद पहलू, उन्नत पूछताछ तकनीकें, एनहांस्ड इंटरोगेशन टेक्निक्स, EITs, जिसमें वाटर बोर्डिंग जैसी तकनीकें शामिल थी। ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर आज भी बहुत तीखी बहस होती है।
बिल्कुल, किताब में बुश का त्रक ये है कि उनके प्रशासन के जो न्याय विभाग के वकील थे उन्होंने इन तकनीकों को कानूनी तौर पर जायज ठहराया था।
अच्छा।
वो इस बात पर जोर देते हैं कि इनका इस्तेमाल लिमिटेड था, सिर्फ कुछ मुट्ठी भर हाई वैल्यू यानी सबसे खतरनाक समझे जाने वाले बंदियों पर, और इससे ऐसी अहम खुफिया जानकारी मिली जिसने कथित तौर पर कई हमलों को टालने में मदद की।
जाहिर है इस दावे पर और इन तकनीकों की नैतिकता और कानूनी वैधता पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं और शायद हमेशा उठते रहेंगे।
हाँ, ये बहुत विवादास्पद रहा है।
9/11 के हमलों ने सीधे तौर पर अगले बड़े फैसले की जमीन तैयार की, 2001 के आखिर में अफगानिस्तान पर आक्रमण। इसका क्या तर्क दिया गया?
तर्क सीधा था, अफगानिस्तान पर उस वक्त तालिबान का शासन था।
हाँ।
और तालिबान अलकायदा और उसके सरगना उसामा बिन लादेन को पनाह दिए हुए था। 9/11 हमलों के बाद अमेरिका ने तालिबान से बिन लादेन और अलकायदा के नेताओं को सौंपने की मांग की,
जिसे तालिबान ने ठुकरा दिया।
जी, बुश का कहना है कि इसके बाद सैन्य कार्रवाई के सिवा कोई चारा नहीं बचा था। मकसद था अलकायदा के ट्रेनिंग कैंप और ठिकानों को नष्ट करना और तालिबान को सत्ता से हटाना।
किताब मानती है कि शुरुआती मिलिट्री ऑपरेशन सफल रहा, तालिबान को जल्दी ही हटा दिया गया, लेकिन उसके बाद जो हुआ यानी नेशन बिल्डिंग, देश का पुनर्निर्माण,
हाँ, एक स्थिर सरकार कायम करना, वो कहीं ज्यादा मुश्किल और लंबा साबित हुआ, और वो चुनौती तो आज तक बनी हुई है एक तरह से।
बिल्कुल। और अफगानिस्तान के बाद आया वो फैसला जो शायद बुश के राष्ट्रपति काल का सबसे ज्यादा बहस का विषय रहा है,
इराक।
हाँ, 2003 में इराक पर आक्रमण। किताब का एक बड़ा हिस्सा इसी फैसले के इर्द गिर्द घूमता है।
जी हाँ।
इस फैसले के पीछे का तर्क क्या था? 9/11 का माहौल तो था ही।
मुख्य तर्क ये दिया गया कि 9/11 ने दिखा दिया कि अमेरिका और उसके साथी देशों पर कितने बड़े हमले हो सकते हैं, तो इस नए माहौल में सद्दाम हुसैन जैसा तानाशाह,
जिसका UN रेजोल्यूशंस को ना मानने का रिकॉर्ड था,
बिल्कुल, उसके हाथों में सामूहिक विनाश के हथियार यानी WMDs होने का खतरा मोल नहीं लिया जा सकता। बुश प्रशासन का मानना था कि सद्दाम के पास WMDs हैं या वो उन्हें बनाने की कोशिश कर रहा है और वो इन्हें आतंकवादियों को दे सकता है।
किताब में UN में जो डिप्लोमैटिक कोशिशें हुईं उनका भी जिक्र है। सद्दाम के रवैये का भी और उस इंटेलिजेंस का भी जिसने WMD प्रोग्राम की तरफ इशारा किया था। लेकिन यहीं पर कहानी का सबसे अहम मोड़ आता है।
हाँ, क्योंकि आक्रमण के बाद इराक में कोई WMD नहीं मिले।
नहीं मिले?
और बुश किताब में इसे खुलकर स्वीकार करते हैं। वो लिखते हैं कि इंटेलिजेंस का गलत निकलना उनकी राष्ट्रपति पद का सबसे बड़ा पछतावा।
Biggest regret of the presidency.
ये एक बहुत बड़ी बात है, इसे मानना।
जी हाँ, ये एक बहुत बड़ी स्वीकारोक्ति है।
लेकिन इस स्वीकारोक्ति के बावजूद वो इराक पर हमले के मूल फैसले का बचाव करते हैं।
हाँ।
उनका तर्क है कि इंटेलिजेंस गलत भले ही निकली हो, लेकिन सद्दाम हुसैन एक क्रूर तानाशाह था। उसने अपने ही लोगों पर जुल्म किए, पड़ोसी देशों पर हमले किए
और वो इलाके की स्थिरता के लिए खतरा बना हुआ था। उनका मानना है कि दुनिया सद्दाम के बिना ज्यादा सुरक्षित है, और फैसला उस वक्त जो जानकारी उपलब्ध थी और जो खतरे का अंदाजा था उसके आधार पर लिया गया था।
जाहिर है, इस फैसले के परिणाम बहुत दूरगामी रहे हैं। इराक में सालों तक अस्थिरता रही, हजारों जाने गईं, मिडिल ईस्ट में पावर बैलेंस पर गहरा असर पड़ा। ये एक ऐसा फैसला है जिस पर इतिहास शायद हमेशा बहस करता रहेगा।
इराक युद्ध के दौरान ही एक और अहम निर्णायक बिंदु आया, 2007 का सर्ज।
हाँ, सर्ज।
2006 आते आते इराक में हालात बहुत बिगड़ चुके थे। सांप्रदायिक हिंसा चरम पर थी, बिल्कुल गृहयुद्ध जैसे हालात थे।
जी, अमेरिका में भी युद्ध का भारी विरोध हो रहा था और सेना वापस बुलाने का दबाव बहुत बढ़ गया था।
उस वक्त एक हाई लेवल ग्रुप था, इराक स्टडी ग्रुप। उसने भी सिफारिश की थी कि धीरे धीरे अमेरिकी फौजें कम की जाएं।
लेकिन बुश ने इस सलाह को मानने से इनकार कर दिया। उन्हें लगा कि अगर सेना हटा ली तो इराक पूरी तरह ढह जाएगा और हालात और भी बदतर हो जाएंगे।
तो उन्होंने एक जोखिम भरा कदम उठाया। उन्होंने जनरल डेविड पेट्रोयस को कमांडर बनाया और उनकी सिफारिश पर इराक में 20,000 से ज्यादा अतिरिक्त सैनिक भेजने का फैसला किया।
इसी को सर्ज कहा गया।
हाँ, मकसद था कि सुरक्षा स्थिति को काबू में लाया जाए, इराकी सुरक्षा बलों को ट्रेन किया जाए और राजनीतिक सुलह के लिए माहौल बनाया जाए।
बुश का मानना है कि फैसला बहुत कठिन था, राजनीतिक रूप से पॉपुलर भी नहीं था, लेकिन इसने काम किया। किताब के मुताबिक सर्ज ने हिंसा में काफी कमी लाई, इराक को स्थिरता की तरफ बढ़ाया और अमेरिकी मिशन को पूरी तरह नाकाम होने से बचाया।
हालांकि आलोचक इसके असर और इसकी कीमत पर सवाल उठाते हैं।
हाँ, उस पर भी बहस है।
अच्छा, ये तो हुए युद्ध और विदेश नीति से जुड़े बड़े फैसले।
जी।
लेकिन घरेलू मोर्चे पर भी चुनौतियां थीं, खासकर 2005 का तूफान कैटरीना।
हाँ, कैटरीना तूफान न्यू ऑर्लीन्स और आसपास के इलाकों में भयंकर तबाही मचाई थी उसने, और बुश प्रशासन की इस आपदा से निपटने के तरीके पर बहुत गंभीर सवाल उठे थे।
किताब में बुश मानते हैं कि शुरुआती सरकारी प्रतिक्रिया, खासकर फेडरल लेवल पर, धीमी थी, अपर्याप्त थी।
जी।
वो ये भी स्वीकार करते हैं कि उनके कुछ शुरुआती बयान, जैसे उस वक्त के फेमा डायरेक्टर माइकल ब्राउन की तारीफ करना जबकि जमीनी हकीकत बिल्कुल अलग थी।
हाँ।
वो लोगों में सरकार के प्रति गुस्से और अलगाव की भावनाओं को बढ़ाने वाले साबित हुए।
विफलता का कारण वो मुख्य रूप से फेडरल, स्टेट और लोकल एजेंसियों के बीच कोऑर्डिनेशन की कमी को बताते हैं, तालमेल की कमी। लेकिन वो ये भी कहते हैं कि अंततः फेडरल सरकार के परफॉर्मेंस की जिम्मेदारी तो उनकी ही थी।
ये अनुभव उनके लिए एक सबक था कि संकट के समय नेतृत्व कैसा दिखना चाहिए और कैसा नहीं।
बिल्कुल।
और फिर उनके कार्यकाल के बिल्कुल आखिर में आया 2008 का वो वैश्विक वित्तीय संकट। लेमन ब्रदर्स जैसी बड़ी कंपनियां डूब गईं, बाजार हिल गए थे।
हाँ, ऐसा लगा था कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था ही ढह जाएगी। उस वक्त के ट्रेजरी सेक्रेटरी हेनरी पॉल्सन और फेडरल रिजर्व के चेयरमैन बेन बर्नानके ने राष्ट्रपति बुश को स्थिति की गंभीरता के बारे में बताया कि हालात कितने नाजुक हैं।
बुश के सामने और मुश्किल फैसला था। एक तरफ उनके अपने मुक्त बाजार के सिद्धांत थे जो सरकारी हस्तक्षेप के खिलाफ थे।
हाँ, रिपब्लिकन पार्टी का सिद्धांत।
बिल्कुल। और दूसरी तरफ पूरी अर्थव्यवस्था को बचाने की जरूरत थी।
तो उन्होंने क्या किया?
उन्होंने फैसला किया हस्तक्षेप करने का। उन्होंने माना कि अनिच्छा से, लेकिन $700 बिलियन के बेलआउट पैकेज को मंजूरी दी। इसे टार्प यानी ट्रबल्ड एसेट रिलीज प्रोग्राम कहा गया।
अच्छा, टार्प।
हाँ, मकसद था बड़े बैंकों और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को ढहने से बचाना ताकि क्रेडिट फ्लो बना रहे और अर्थव्यवस्था पूरी तरह ठप ना हो जाए।
दुश इसे एक भयानक मंदी, मतलब ग्रेट डिप्रेशन जैसी मंदी को रोकने के लिए उठाया गया एक जरूरी आपातकालीन कदम मानते हैं। ये फैसला भी काफी विवादास्पद रहा, लेकिन वो इसे अपने कार्यकाल के सबसे जरूरी फैसलों में से एक गिनते हैं।
तो ये तो थे वो बड़े संकट और युद्ध। इनके अलावा किताब कुछ ऐसी पहलों पर भी रोशनी डालती है जिन्हें बुश अपनी विरासत का, अपनी लेगेसी का सकारात्मक हिस्सा मानते हैं।
बिल्कुल, इनमें से एक है पेपफार, प्रेसिडेंट्स इमरजेंसी प्लान फॉर एड्स रिलीफ।
हाँ, पेपफार।
ये अफ्रीका और दूसरे विकासशील देशों में एड्स से लड़ने के लिए शुरू की गई एक बहुत बड़ी अमेरिकी योजना थी। बुश इसे अपने राष्ट्रपति काल की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक मानते हैं और इसे अपनी करुणामय रूढ़िवाद की सोच का एक ठोस उदाहरण बताते हैं। उनके लिए ये एक नैतिक जिम्मेदारी निभाने जैसा था।
और दूसरी अहम पहल थी स्वतंत्रता एजेंडा।
जी,
ये उनके दूसरे कार्यकाल की विदेश नीति का केंद्रीय तत्व था। इसका मूल विचार था कि दुनिया भर में, खासकर मध्य पूर्व में, लोकतंत्र और मानवाधिकारों को बढ़ावा देना न सिर्फ नैतिक रूप से सही है,
हाँ,
बल्कि ये अमेरिका की अपनी सुरक्षा के लिए भी जरूरी है। उनका मानना था कि लोकतंत्र ज्यादा शांतिपूर्ण और स्थिर समाज बनाते हैं।
बेशक, इस एजेंडे के तरीकों और नतीजों पर भी काफी बहस हुई है। कुछ ने इसे बहुत आइडियलिस्टिक कहा तो कुछ ने इंटरवेंशनिस्ट, मतलब दखलंदाजी वाला।
हाँ, लेकिन बुश के लिए ये उनके मूल विश्वासों का प्रतिबिंब था।
तो इन तमाम फैसलों और पहलों को देखते हुए किताब से बुश के मूल दर्शन, उनकी सोच के बारे में क्या पता चलता है? वो किन सिद्धांतों पर चलते थे?
कई मुख्य बातें हैं जो उभर कर आती हैं। पहला तो है, नेतृत्व का मतलब है निर्णायक होना, डिसाइसिव लीडरशिप। बुश मानते थे कि नेता का काम पॉपुलैरिटी हासिल करना नहीं है, बल्कि मुश्किल और अक्सर अनपॉपुलर फैसले लेना और फिर उन पर टिके रहना है। वो खुद को द डिसाइडर कहते भी थे। हाँ, सुना है। दूसरा, सिद्धांतों और नैतिक दृढ़ विश्वास का बहुत महत्व है, मतलब इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल्स एंड कन्विक्शंस।
जी, किताब बार बार दिखाती है कि उनके फैसले उनके गहरे विश्वासों से जुड़े थे, चाहे वो स्वतंत्रता का मूल्य हो, व्यक्तिगत जिम्मेदारी का सिद्धांत हो, या उनका गहरा ईसाई धर्म में विश्वास। उनके लिए नैतिक दिशा अक्सर पॉलिटिकल फायदे या पब्लिक ओपिनियन पोल से ज्यादा अहम थी।
तीसरा, स्वतंत्रता और लोकतंत्र में अटूट विश्वास, बिलीफ इन फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी। यही स्वतंत्रता एजेंडा का आधार था।
हाँ, उनका मानना था कि स्वतंत्रता ईश्वर का दिया हुआ वरदान है और लोकतंत्र को बढ़ावा देना न सिर्फ अमेरिका के हित में है, बल्कि ये दुनिया के लिए भी अच्छा है।
चौथा पहलू है जिम्मेदारी और जवाबदेही, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी।
किताब में वो अपने फैसलों की जिम्मेदारी लेते दिखते हैं, चाहे परिणाम अच्छे रहे हों या बुरे।
जैसे WMD इंटेलिजेंस की विफलता या कैटरीना पर धीमी प्रतिक्रिया के मामले में, वो गलतियों को स्वीकार करते हैं भले ही वो अपने मूल निर्णय का बचाव करते रहें।
पांचवा, उनके विश्वास यानी उनके धर्म की भूमिका,
रोल ऑफ फेथ।
किताब में कई जगहों पर जिक्र आता है कि कैसे उनका ईसाई धर्म उन्हें व्यक्तिगत शक्ति देता था, नैतिक स्पष्टता देता था और मुश्किल समय में टिके रहने की हिम्मत देता था।
हाँ, संकट के क्षणों में प्रार्थना का उल्लेख बार बार आता है।
जी, और स्टेम सेल या PAPFAR जैसे फैसले कहीं ना कहीं उनके धार्मिक और नैतिक विश्वासों से भी जुड़े थे।
और छठा बिंदु शायद है दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव।
बुश जोर देते हैं कि इन्होंने फैसले तात्कालिक राजनीतिक फायदे या लोकप्रियता देखकर नहीं लिए।
हाँ, बल्कि लॉन्ग टर्म परिणामों को ध्यान में रखकर लिए। उनका मानना है कि किसी राष्ट्रपति के काम का सही मूल्यांकन इतिहास करता है, न कि उस समय का जनमत। किताब का नाम ही डिसीजन पॉइंट्स है, यानी निर्णायक बिंदु। अगर हमें उनके जीवन और कार्यकाल के तीन सबसे अहम मोड़ चुनने हों जो किताब के नजरिए से सबसे ज्यादा परिवर्तनकारी रहे, तो वो कौन से होंगे?
तीन सबसे अहम।
पहला तो शायद वही निजी फैसला होगा जिससे किताब शुरू होती है, शराब छोड़ना, 1986 में।
हाँ,
कहानी हमने सुनी 40वें जन्मदिन पर यह एहसास कि शराब उनकी जिंदगी को कंट्रोल कर रही है, और फिर विश्वास, परिवार और अनुशासन के बल पर उसे छोड़ना। यह परिवर्तनकारी क्यों था? क्योंकि बुश के मुताबिक इसने उन्हें वो सेल्फ कंट्रोल और मानसिक स्पष्टता दी जो उनके बाद के पूरे सार्वजनिक जीवन,
हाँ, खासकर राष्ट्रपति पद की भारी जिम्मेदारियों के लिए जरूरी थी। ये उनके लिए आत्म सुधार और संकल्प का प्रतीक था।
दूसरा मोड़ तो शायद निर्विवाद रूप से वो है जिसने न सिर्फ उनके राष्ट्रपति पद बल्कि शायद 21वीं सदी की शुरुआत को ही परिभाषित कर दिया।
11 सितंबर 2001,
9/11। बिल्कुल, कहानी फिर वही, फ्लोरिडा के क्लासरूम में खबर मिलना, शुरुआती भ्रम, फिर एयरफोर्स वन पर लिए गए फैसले और उनका वॉर टाइम प्रेसिडेंट में बदलना।
और ये परिवर्तनकारी इसलिए था क्योंकि इसने उनके राष्ट्रपति पद का केंद्रीय मिशन तय कर दिया, अमेरिका को आतंकवाद से सुरक्षित रखना।
हाँ, इसी के बाद पैट्रियट एक्ट आया, होमलैंड सिक्योरिटी विभाग बना और अफगानिस्तान व इराक युद्ध जैसे बड़े कदम उठाए गए। इसने अमेरिका की फॉरेन और सिक्योरिटी पॉलिसी की दिशा ही बदल दी।
जी,
और तीसरा निर्णायक बिंदु, जो शायद सबसे ज्यादा जटिल और विवादास्पद है,
वो इराक युद्ध का फैसला और WMD इंटेलिजेंस की विफलता।
हाँ, कहानी ये है कि 911 के बाद के माहौल में सद्दाम हुसैन से महसूस किए जा रहे खतरे और WMD होने की खुफिया जानकारी के आधार पर आक्रमण का फैसला लिया गया। बाद में पता चला कि वो इंटेलिजेंस गलत थी। बुश खुद इसे अपना सबसे बड़ा पछतावा बताते हैं, लेकिन सद्दाम को हटाने के फैसले को सही ठहराते हैं।
और ये परिवर्तनकारी क्यों है? क्योंकि इसके नतीजे बहुत बड़े और स्थायी रहे। इसने मध्य पूर्व में अस्थिरता बढ़ाई, अमेरिका की अंतर्राष्ट्रीय छवि पर असर डाला, और इसने बुश की विरासत को शायद किसी भी और चीज से ज्यादा प्रभावित किया है।
हाँ, और ये इस बात का एक बड़ा उदाहरण बन गया कि कैसे टॉप लीडरशिप को अक्सर अधूरी या गलत जानकारी के आधार पर भी भारी जोखिम वाले फैसले लेने पड़ते हैं
और उसके परिणाम कितने गंभीर हो सकते हैं।
बिल्कुल। तो इस पूरे वृत्तांत से, एक राष्ट्रपति के अपने अनुभवों के इस लेखा जोखा से, हम अपने जीवन और नेतृत्व की भूमिकाओं के लिए क्या सबक सीख सकते हैं?
कई मानवीय सबक निकलते हैं इसमें से। पहला तो यही है कि दबाव में निर्णय लेना कितना मुश्किल होता है, डिसीजन मेकिंग अंडर प्रेशर।
हाँ, ये तो है।
हम सब अपनी जिंदगी में कभी ना कभी ऐसी स्थितियों का सामना करते हैं जहां जानकारी पूरी नहीं होती, दाव ऊंचे होते हैं और हमें कोई रास्ता चुनना पड़ता है। बुश की कहानी दिखाती है कि उच्चतम स्तर पर ये दबाव कितना ज्यादा हो सकता है।
दूसरा सबक शायद सिद्धांतों और व्यावहारिकता के बीच संतुलन साधने का है, प्रिंसिपल्स वर्सेस प्रैग्मेटिज्म। कई बार हमारे आदर्श या सिद्धांत हमें एक दिशा में ले जाते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत या तात्कालिक जरूरतें दूसरी तरफ इशारा करती हैं। जैसे वो टार्प यानी बैंक बेलआउट का फैसला बुश के मुक्त बाजार सिद्धांतों के खिलाफ था।
हाँ।
लेकिन उन्हें लगा कि अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए ये जरूरी है। ये जो द्वंद्व है, ये जीवन के कई क्षेत्रों में देखने को मिलता है।
तीसरा, नेतृत्व का भार, बर्डन ऑफ लीडरशिप। चाहे आप किसी देश के राष्ट्रपति हों, किसी कंपनी के CEO हों, या अपने परिवार के मुखिया हों, लीडरशिप की भूमिका अक्सर अकेली और भारी जिम्मेदारी वाली होती है।
सही बात है।
अंतिम फैसला आपका होता है और उसके परिणाम भी आपको झेलने पड़ते हैं। किताब इस अकेलेपन और बोझ को दर्शाती है।
और चौथा, व्यक्तिगत चरित्र की नींव, फाउंडेशन ऑफ पर्सनल कैरेक्टर। किताब इस बात पर जोर देती है कि सेल्फ डिसिप्लिन, नैतिक स्पष्टता और अपने मूल्यों पर टिके रहना किसी भी तरह के नेतृत्व के लिए कितना जरूरी है।
हाँ, बुश के लिए शराब छोड़ने का फैसला इसी चरित्र निर्माण का हिस्सा था।
बिल्कुल। और एक और अहम बात जो सामने आती है, वो है गलतियों से सीखने का महत्व।
जी हाँ,
यहाँ जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी का पहलू महत्वपूर्ण हो जाता है। किताब में बुश कुछ मामलों में, जैसे कैटरीना प्रतिक्रिया, WMD इंटेलिजेंस, गलतियों को स्वीकार करते हैं। ये दिखाता है कि अपनी त्रुटियों को मानना और उनसे सबक लेना, भले ही मुश्किल हो, क्रेडिबिलिटी बनाए रखने और आगे बढ़ने के लिए जरूरी है। ये स्वीकार करना कि नेता भी इंसान होते हैं और उनसे गलतियां हो सकती हैं।
और संकट प्रबंधन, क्राइसिस मैनेजमेंट से जुड़े सबक भी हैं। 9/11, कैटरीना, वित्तीय संकट, ये सब बड़े संकट थे। इनसे निपटने के अनुभवों से शांत रहने, स्पष्ट संवाद करने, अलग अलग एजेंसियों के बीच कोऑर्डिनेशन बनाने और असफलताओं से सीखने जैसे महत्वपूर्ण पहलू उभरते हैं।
तो अगर हमें जॉर्ज डब्ल्यू बुश की डिसीजन पॉइंट्स पर हुई इस पूरी चर्चा को समेटना हो और तीन मुख्य बातें निकालनी हो, तो वो क्या होंगी?
तीन मुख्य बातें। पहली, एक भावनात्मक अंतर्दृष्टि। शायद यह है कि नेतृत्व खासकर राष्ट्रीय या वैश्विक संकट के समय एक बेहद भारी और अक्सर अकेला सफर होता है।
हाँ।
और व्यक्तिगत दृढ़ विश्वास, जैसे बुश के मामले में उनका गहरा धार्मिक विश्वास, ऐसे समय में टिके रहने और कठिन फैसले लेने के लिए एक महत्वपूर्ण सहारा बन सकता है, भले ही वो फैसले विवादास्पद क्यों ना हो।
दूसरी, एक बौद्धिक अंतर्दृष्टि ये हो सकती है कि नेतृत्व का सार ही अक्सर अधूरी जानकारी, अनिश्चित भविष्य और तीव्र दबाव के बीच मुश्किल चुनाव करने में होता है।
सही है।
फैसलों के नतीजों पर बहस हमेशा जारी रह सकती है और रहनी भी चाहिए, लेकिन उन फैसलों को समझने के लिए उस समय के संदर्भ, उपलब्ध जानकारी और निर्णय लेने वाले के जो मार्गदर्शक सिद्धांत थे, उनको ध्यान में रखना जरूरी है। इतिहास का मूल्यांकन अक्सर समय के साथ बदलता है।
बिल्कुल। और तीसरी, एक सार्वभौमिक अंतर्दृष्टि, यूनिवर्सल इनसाइट, जो शायद हम सबके लिए प्रासंगिक है, वो ये है कि व्यक्तिगत चरित्र, नैतिक स्पष्टता और आत्म अनुशासन किसी भी क्षेत्र में प्रभावी नेतृत्व और निर्णय लेने की नींव है। और इससे भी महत्वपूर्ण, गलतियों को स्वीकार करने और उनसे सीखने की क्षमता व्यक्तिगत और पेशेवर विकास के लिए बेहद जरूरी है। चाहे आप दुनिया के सबसे शक्तिशाली पद पर हों या जीवन के किसी भी मोड़ पर।
बिल्कुल सही कहा।
फिर मिलेंगे अगले अंक में एक नई विश्वविख्यात व्यक्ति, एक नई किताब और एक नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।